आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के राजस्थान राज्य में होने वाली निर्मम हत्या की। राजस्थान में मुस्लिम मजदूर की बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई। मजदूर पर एक के बाद एक वार किया गया और उसकी जान ले ली गई, जबकि इस पूरी घटना की वीडियो भी बनाई गई और इसे इंटरनेट पर डाल दिया गया। जिस बेदर्दी से हत्या की गई वो भयानक आतंकियों की याद दिलाती है और ये समझ पाना कठिन हो जाता है कि कैसे एक आम आदमी दूसरे व्यक्ति की इस निर्ममता से हत्या कर सकता है। हत्या करने के बाद शव को काटा गया और फिर आग में जला दिया गया। हत्यारे का कहना है कि उसने लव जिहाद के नाम पर ये हत्या की है।
प्रार्थना है कि आप इन जिहादियों के प्रेम जाल में नहीं फंसे। ये आपका दिल जीत कर इस्लामिक व्यवस्था के अनुसार पूरी ज़िंदगी आपसे अपनी हवस मिटाते रहेंगे, क्योंकि आप एक हिंदू हैं। आपको जन्म देने वाले माता पिता ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा की है। आप में से ही लव जिहाद में फंसी हुई एक अबला लड़की की मदद करने के कारण मुझे अपनी ज़िंदगी दांव पर लगानी पड़ी है। ये हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए इस्लामिक देशों से जहरीले नशे बनाकर हमारे देश में फैला रहे हैं। नकली नोट चलाकर हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़कर ये इन पैसों से अपने जिहादी संगठन चला रहे हैं। फिल्मों के माध्यम से हमारे देवी देवता को अपमानित किया जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म के इतिहास को बदला जा रहा है। हमें पीके और पद्मावती जैसी फिल्में बनने से रोकनी होगी। ये पाकिस्तान में बैठकर हमें अंडरवर्ल्ड के नाम पर डरा धमका रहे हैं। साथियों, हमें एक होकर देश में फैले हुए इस्लामिक जिहाद को मिटाना है। इसके लिए कृपया अपने सारे जाति बंधन तोड़कर एक हिंदू समाज बनकर इस्लामिक जिहाद से के खिलाफ आंदोलन में शुरुआत करें। जय हिंद, भारत माता की जय।
ये घटना राजस्थान के राजसमंद की है। राजस्थान में ही पहलू खान की भी बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी और वीडियो बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 45 साल के इफराजुल उर्फ गुट्टू का संबंध पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से था, जबकि अभियुक्त शंभूलाल को गिरफ्तार किया गया है। शंभूलाल ने हत्या के वीडियो के अलावा दो और वीडियो शेयर किए, जिनमें से एक में वो मंदिर में है और हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में वो भगवा ध्वज के सामने बैठा है और लव जिहाद तथा इस्लामिक जिहाद के खिलाफ भाषण दे रहा है। लव जिहाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन काफ़ी समय से उठा रहे हैं और टीकाकारों का मानना है कि चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को खूब भुनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मुद्दे पर बहुत कुछ बोलते रहे हैं।
हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है, इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहाँ उनके साथ एक वहाँ पर एक जो हो रहा है इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पर पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताती हो? पहले से अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। हमें आपत्ति इस बात पर नहीं, आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सन 2010 में केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतनंदन ने भी इस बात को कहा था कि केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजोरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो आप लोग बुरा नहीं मानते, मैं कहता हूं तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस पर अवश्य आत्ममंथन होना चाहिए।
हिंदू जागरण मंच नाम का एक कट्टरपंथी संगठन जिसके नेता अज्जू चौहान हैं, वो भी यही बात कहता है। चौहान भी ये कहते हैं कि ये एक साजिश है और साजिश के तहत मुस्लिम लड़कों द्वारा हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है और उनका धर्मांतरण कराया जाता है।
लव जिहाद के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है और जिहादी जिस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करके उनको बहला फुसला करके ले जाते हैं, और कुछ दिनों बाद जब वो लड़की को पता चलता है कि वह गलत चुंगल में आकर के फंस गई है तो उस समय उसे दुख होता है, लेकिन ऐसे जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदू जागरण मंच द्वारा ये तय किया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2100 बहुएं लाई जाएंगी और ऐसे नौजवान तय किए जाएंगे कि जो बहुओं को ला सके, और उनके परिवार में भी संपर्क किया जाएगा कि अगर किसी दूसरे धर्म की बेटी आती है तो उसको बहू के रूप में स्वीकारें और उसे बेटी के रूप में प्यार दें।
प्रोफेसर संगीत रागी को भी यही लगता है कि लव जिहाद एक सोची समझी साजिश है।
लेकिन मैं 2009 से इसको ट्रैक कर रहा हूं और एक दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में कई ऐसे आर्टिकल, कई ऐसे स्टोरीज वहां आए जिसमें लव जिहाद के बारे में चर्चा हुई थी, और उसमें वो डिटेल स्टोरीज थे कि किस प्रकार से एक मुस्लिम युवक किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्रिश्चियंस और हिंदूज दोनों के लड़कियों का को फुसलाते हैं और किस प्रकार से उनका धर्मांतरण करते हैं। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई स्टोरीज जो हैं वो आई हैं। इसको हम इस नज़रिए से देखें कि दारुल हरब और दारुल इस्लाम ये दो ऐसे चीज हैं जो हमेशा इस्लामिक थियोलॉजी में डिस्कस किया जाता है।
मगर प्रोफेसर मनीषा सेठी इस विचार से सहमत नहीं है।
दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की बात की, हिंदुस्तानी मुसलमान का दारुल अमन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, को ना भूला जाए। धर्मांतरण पे फिर बहस होगी, हम लोग करेंगे, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम ये चयन करें कि हम अपना जीवन साथी किसको बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आज का नौजवान बहुत सुलझा हुआ है, वो समझ रहा है कि किस तरह की किस समाज को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है, और वो इस तरह की राजनीति को नकारेगा। संगीत जी ने बोला कि धर्मांतरण हो रहा है और बहुत पॉपुलेशन हो रहा है, आप इस तरह का जो मोरल पैनिक्स हैं एक राजनीति में, एक पैनिक क्रिएट करना कि सारे हिंदू धर्मांतरण करके इस्लाम में जा रहे हैं या बुद्धिस्ट बन रहे हैं, ये आज का नया नहीं है। ये 1920-1930 के हिंदू महासभा के पर्चे देख लीजिए, यूएन मुखर्जी की किताब देख लीजिए, हिंदूज अ डाइंग रेस, ये सब पुराना चल रहा है, कोई नया नहीं है। ये सियासी मसला है, विशुद्ध सियासी मसला है, ये कोई सामाजिक मसला नहीं है। बच्चे तय करेंगे उनको किसके साथ प्रेम करना है, किसके साथ शादी करनी है।
अब जरा एक जोड़े की बात सुनिए जिसने कोर्ट मैरिज की और जिस पर कट्टरपंथी संगठनों ने भारी हंगामा मचाया और ये कहा कि उन्होंने लव जिहाद किया है।
जो धर्म सेना, जो भी कोई भी सेना है, ये सब बेफालतू आ रही हैं। ऐसा वो गुस्सा है, धमकी नहीं कि मीन्स हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ठीक है, वो समय के साथ ठीक हो जाएगा, पर हम साथ रहना चाहते हैं।
काफ़ी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और 4-5 साल से हम लोग रिलेशनशिप में भी हैं, अच्छा सब कुछ साथ में, बचपन से ही जानते हैं एक दूसरे को, और हमने अपनी मर्जी से शादी कर लिए थे, कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई किए हुए थे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा निकाह हो गया है और कोई ज़बरदस्ती नहीं, और हम लोग वैसा कोई धर्म और वैसा कट्टरपंथी वाला नहीं मानते, हम लोग दोनों पढ़े लिखे और सभी धर्म को मानते हैं, ऐसा कोई धर्म परिवर्तन वाला मामला नहीं है, दोनों एक दूसरे का अपना धर्म को दोनों आदर देते हैं, इज्जत करते हैं और सभी धर्मों को मानने वाले हैं, तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग को परेशान ना किया जाए और हम लोग हंसी खुशी अपनी लाइफ जिए, और लोग ने भी किए, हम लोग भी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें।
सबसे भयानक बिंदु ये है कि इस प्रकार के मुद्दों को उठाकर गहरा उन्माद भर दिया जाता है और नतीजे में लोग बड़ी सरलता से किसी इंसान की हत्या कर बैठते हैं और हत्यारे बन जाते हैं तथा उन्हें इस पर कोई अफसोस या पछतावा नहीं होता। भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनका कहना है कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए सोच बदलने और दिमाग में कट्टरता भरने की प्रक्रिया युवाओं को हत्यारा बना रही है और टाइम बम के समान वो हो जाते हैं जो कभी भी विस्फोटित हो सकता है।
ये हिंदू मुस्लिम टॉपिक इतना ज्यादा क्यों है, क्या आपने कभी सोचा है? आप 3.5 साल के दौरान सभी चैनलों पर हुए डिबेट की सूची बनाइए, ज्यादातर का संबंध हिंदू मुस्लिम टॉपिक से मिलेगा। इन बहसों से क्या आपका व्यापार बढ़ा, रेलवे में वैकेंसी आ गई, या आपकी सैलरी बढ़ गई, या बच्चों को अच्छा स्कूल या विश्वविद्यालय मिला? इनका एक ही मकसद है, जनता की बुनियादी समस्याओं को सामने न आने दिया जाए। आप मेरी बात याद रखिएगा और हो सके तो लिखकर पर्स में रख लीजिए कि हिंदू मुस्लिम टॉपिक आपके बच्चों को बर्बाद कर देगा। ये इतना जहर भर देगा कि वे भीड़ में बदल जाएंगे और हर वक्त टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक करते नजर आएंगे।
रवीश कुमार की ये चिंता बहुत हद तक जमीनी सच्चाई को पेश करती है, क्योंकि हत्या की घटनाएं बार बार हो रही हैं और उनके लिए कारण लव जिहाद या गौरक्षा जैसे विषय होते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने एक लंबी सूची गौरक्षा के नाम पर होने वाले बर्बर हमलों की पेश कर दी।
गौरक्षा के नाम पर जो लोग मारे गए या बुरी तरह से जख्मी हुए उनके लिस्ट, उनके नाम और तारीखें इस तरह हैं। 28 सितंबर 2015 मोहम्मद इखलाक दादरी, अक्टूबर 2015 नोमान सहारनपुर, अक्टूबर 9 2015 रफीक और हबीब मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट यूपी, 13 जनवरी 2016 मोहम्मद हुसैन और नसीमा बानो, 18 मार्च 2016 मजलूम अंसारी और इम्तियाज़ खान, जुलाई 11 2016 सात सदस्य एक दलित फैमिली के, जुलाई 17 2016 एक दलित फैमिली के सदस्य कर्नाटक में चिकमगलूर में, जुलाई 26 2016 दो मुस्लिम महिलाओं को पीटा गया, जुलाई 30 2016 मुजफ्फरनगर एक मुस्लिम परिवार पर हमला हुआ, अगस्त 7 2016 दो दलित भाइयों को नंगा करके पेड़ से बांध के मारा गया, अगस्त 24 2016 हरियाणा मेवात में 10 लोगों ने रशीदन और इब्राहिम दोनों को मार दिया, उनके साथ जो दो औरतें थी 21 और 16 साल की लड़की उनका गैंग रेप किया और 16 साल की जो लड़की थी बेचारी नाबालिग उसका गैंग रेप किया, 1 अप्रैल 2017 अलवर में पहलू खान मारा गया।
चिंता का विषय यह है कि बार बार दरिंदगी की घटनाएं होती हैं, लेकिन उनको रोकने का कोई ठोस उपाय नहीं किया जाता। ठोस कार्यवाही नहीं होती कि दूसरे लोग डरें और अपराध करने से बचें और पीड़ित को न्याय मिले। पत्रकार रवीश कुमार ने अपने कार्यक्रम में ये दर्शाया कि पीड़ितों को सिस्टम का सितम किस भयानक तरीके से सहना पड़ता है और उन्हें न्याय मिलना तो दूर अन्याय का निशाना बनाया जाता है। जो लोग या संगठन अपने स्वार्थों के लिए आम लोगों को उकसा रहे हैं और उन्हें सीधे साधे नागरिक से हत्यारा और चरमपंथी बना रहे हैं, उन्हें हरगिज़ यह नहीं समझना चाहिए कि वह अपने समुदाय की रक्षा कर रहे हैं। वो वास्तव में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और देश के समाज के साथ ही अपने समुदाय का भविष्य भी अंधकार की ओर ढकेलना चाहते हैं।